एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार, और मैं हूं आपकी साथी मेजबान। किताब है चक्रवर्ती रामप्रसाद की ईस्टर्न फिलॉसफी अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में कहें तो पूर्वीय दर्शन एक व्यवस्थित समझ।
हाँ, और ये किताब आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर पश्चिम में ये सोच रहती है कि पूरब के विचार या तो धर्म है या कुछ रहस्यमयी सी बातें।
बिल्कुल, ये किताब उस धारणा को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि भई हजारों सालों से हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, ताओवादी परंपराओं ने दुनिया, चेतना, इंसान के होने को समझने के लिए कितने व्यवस्थित, कितने तर्कसंगत दार्शनिक ढांचे बनाए हैं।
सही कहा। असली फिलॉसफी सिर्फ ग्रीस या यूरोप में ही नहीं हुई। ये किताब बताती है कि ज्ञान क्या है, नैतिकता क्या है, सच क्या है, मैं कौन हूँ।
हाँ, इन बुनियादी सवालों पर पूर्व में भी उतनी ही, बल्कि कभी कभी तो और अलग ढंग से गहराई से सोचा गया है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल विचारों को थोड़ा सरल और दिलचस्प तरीके से सामने रखें, देखें कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है।
बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं लेखक से, चक्रवर्ती रामप्रसाद। ये कोई आम अकेडमिक नहीं है।
हाँ, सुना इनके बारे में, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, राइट?
हाँ, तुलनात्मक धर्म और दर्शन के, और ब्रिटिश एकेडमी के फेलो भी हैं। भारतीय दर्शन, खासकर संस्कृत वाले जो क्लासिकल सिस्टम है, और बौद्ध दर्शन, इन पर इनकी पकड़ जबरदस्त है।
लेकिन जो बात मुझे खास लगी वो है इनका दोहरा नजरिया। एक तरफ तो पूर्वी ग्रंथों की गहरी समझ।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ पश्चिमी अकादमिक दुनिया की जो रिग्रस ट्रेनिंग होती है, विश्लेषण करने की क्षमता।
हाँ, तो ये एक तरह से पुल का काम करते हैं। सिर्फ भाषा का अनुवाद नहीं बल्कि अवधारणाओं का, सोच का अनुवाद करते हैं।
सही कहा, और वो ये काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं। पूर्वी विचारों को न तो जरूरत से ज्यादा आसान बनाते हैं, न ही उन्हें बस एग्जॉटिक रहस्यमयी चीज की तरह दिखाते हैं।
अच्छा,
वो बुद्ध को या शंकर को, प्लेटो या कांट जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बराबर खड़ा करते हैं। दिखाते हैं कि ये सब गंभीर विचारक थे जिनके पास अपने तर्क थे, अपनी प्रणालियां थीं।
उनका मकसद क्या है फिर?
उनका मकसद है इन पूर्वी दार्शनिक परंपराओं को दुनिया भर की जो फिलोसॉफिकल बातचीत है उसके केंद्र में लाना, उन्हें उनका सही स्थान दिलाना।
समझ गया। तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब आखिर करती क्या है, इसका निचोड़ क्या है?
मोटे तौर पर कहें तो ये भारत और चीन की जो मुख्य दार्शनिक धाराएं हैं ना,
हाँ,
उनका एक बहुत ही व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक परिचय देती है। ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं बताती, बल्कि उनके मूल तर्क क्या हैं, उनकी खास शब्दावली क्या है, जैसे कर्म, धर्म, निर्वाण।
हाँ, ये सब तो सुनते रहते हैं।
बिल्कुल, तो ये बताती है कि ये शब्द कैसे समय के साथ विकसित हुए, इनके पीछे का पूरा सिस्टम क्या है।
और आपने पहले कहा था कि ये दर्शन और धर्म वाली दीवार गिराती है।
हाँ, वो बहुत जरूरी बात है। अक्सर मान लिया जाता है कि दर्शन तो पश्चिम का है, तर्क वाला, और पूरब में तो धर्म है या रहस्यवाद।
हाँ, ये बंटवारा तो है।
ये किताब कहती है कि ये बंटवारा ठीक नहीं है। कर्म, धर्म, निर्वाण, या जैसे चीन में वूवे है, ये सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक चीजें नहीं हैं, ये तकनीकी दार्शनिक अवधारणाएं हैं। इनके पीछे पूरा लॉजिक है, पूरा सिस्टम है।
अच्छा, तो ये एक तरह से इन विचारों को गंभीरता से लेने की बात कर रही है।
बिल्कुल, किताब शुरू होती है ये समझाने से कि भाई इन पुराने ग्रंथों को पढ़ें कैसे, उनकी व्याख्या कैसे करें।
हाँ, ये भी जरूरी है।
फिर ये अलग अलग परंपराओं में जाती है, हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, ताओ, और देखती है कि ये बड़े सवालों के जवाब कैसे देते हैं, ज्ञान कैसे मिलता है, सच क्या है, हमें जीना कैसे चाहिए।
और आखिर में आज के लिए क्या सबक है, इस पर भी बात करती है।
हाँ, समकालीन दुनिया में इन विचारों की क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी चर्चा है।
ठीक है, तो अब जरा इन परंपराओं की गहराई में उतरते हैं। किताब की शुरुआत कैसे होती है?
शुरू में ही किताब एक मजबूत नींव रखती है। रामप्रसाद इस आम गलतफहमी को दूर करते हैं कि पूर्वी सोच तर्क के खिलाफ या बस रहस्यमयी।
हाँ, ये स्टीरियोटाइप तो है।
वो बताते हैं कि नहीं, चाहे वेदांत हो या बौद्ध धर्म की मध्यमुख शाखा, इनमें लॉजिक और एनालिसिस के बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके विकसित हुए हैं।
अच्छा, और ग्रंथों को पढ़ने के बारे में क्या कहती है किताब?
हाँ, ये भी बताती है कि इन ग्रंथों को अकेले में नहीं पढ़ा जा सकता। सदियों से इन पर टीकाएं मतलब कमेंट्रीज लिखी गई हैं, वो इनके अर्थ खोलती हैं। और एक और बात, यहाँ अक्सर दार्शनिक समझ और आध्यात्मिक अभ्यास मतलब प्रैक्टिस साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है,
मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस साथ में।
बिल्कुल। और किताब ये भी कहती है कि पूरब बनाम पश्चिम जैसा सीधा सीधा बंटवारा करना ठीक नहीं, इससे हम इन विचारों की जटिलता खो देते हैं।
ठीक है, तो अब आते हैं भारतीय परंपराओं पर। सबसे पहले हिंदू दर्शन।
हाँ, किताब वेदों से शुरू करती है लेकिन फिर उपनिषदों पर फोकस करती है। यही वो बीज मिलते हैं जिनसे आगे बड़े बड़े विचार पनपे।
उपनिषद, हाँ नाम तो सुना है, मुख्य विचार क्या है वहाँ?
मुख्य विचार है ब्रह्म, वो परम सत्य, परम वास्तविकता जो हर चीज का आधार है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है।
ब्रह्म और
आत्मन यानी हमारा अपना स्व, हमारी आत्मा।
ब्रह्म और आत्मन और इनका रिश्ता?
यही आता है वो प्रसिद्ध महावाक्य तत् त्वम असि।
हाँ, तुम वही हो।
बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारा जो असली स्व है आत्मन, वो उस परम सत्य ब्रह्म से अलग नहीं है, वो वही है। इसी को जानना ज्ञान का शिखर है।
वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है।
हाँ, और इसी से जुड़ते हैं कर्म का सिद्धांत।
अपने कामों का फल।
हाँ, और संसार, जन्म मरण का चक्र, और इन सबसे मोक्ष पाना यानी मुक्ति, यही जीवन का परम लक्ष्य माना गया।
तो ये सब उपनिषदों में है, इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद हिंदू सोच छह मुख्य स्कूलों या दर्शनों में और व्यवस्थित हुई। किताब सब पर थोड़ी बात करती है पर कुछ पर ज्यादा जोर है।
जैसे?
जैसे सांख्य दर्शन, ये दुनिया को दो मूल चीजों में देखता है, पुरुष यानी चेतना कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी पदार्थ मैटर।
चेतना और पदार्थ?
हाँ, ये द्वैतवादी है। दुख इसलिए होता है कि पुरुष मतलब चेतना खुद को गलती से प्रकृति यानी पदार्थ मान लेती है। मुक्ति मिलती है इस भेद को समझने से।
अच्छा, और योग? योग दर्शन?
योग दर्शन इसी सांख्य का प्रैक्टिकल रास्ता है। इसमें नैतिक अनुशासन, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब के जरिए पुरुष को प्रकृति से अलग करने का अभ्यास किया जाता है।
समझ गया, ये तो काफी जाना पहचाना है। और कोई मुख्य दर्शन?
हाँ, फिर न्याय वैशेषिक स्कूल है। इन्होंने लॉजिक और ज्ञान के स्रोतों पर बहुत काम किया, मतलब हमें सही ज्ञान कैसे मिलता है, प्रत्यक्ष देखकर, अनुमान लगाकर, किसी भरोसेमंद व्यक्ति की बात सुनकर।
अच्छा, तो लॉजिक पर बहुत जोर था।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारतीय सोच कितनी विश्लेषणात्मक थी। और फिर सबसे प्रभावशाली स्कूल रहा वेदांत, जो उपनिषदों पर ही आधारित है।
वेदांत? इसके तो कई रूप सुने हैं।
हाँ, इसके अंदर भी कई उप स्कूल है। किताब मुख्य रूप से तीन पर चर्चा करती है। पहला अद्वैत वेदांत, इसके सबसे बड़े नाम है शंकर,
शंकराचार्य।
हाँ, ये कट्टर अद्वैतवादी हैं, कहते हैं सिर्फ ब्रह्म ही सच है, परम सत्य एक ही है।
तो फिर ये दुनिया, हम और आप?
वो कहते हैं ये माया है, एक तरह का भ्रम, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। हमारी आत्मा भी असल में ब्रह्म ही है, पर हम अज्ञान के कारण खुद को अलग समझते हैं। मुक्ति मिलती है ज्ञान से, ये जानने से कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ।
ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है, सब कुछ ब्रह्म।
हाँ, लेकिन फिर दूसरे स्कूल है, जैसे रामानुज का विशिष्टाद्वैत वेदांत।
वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि नहीं, आत्माएं और ये दुनिया ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म यानी ईश्वर के ही वास्तविक गुण या हिस्से हैं, जैसे शरीर और उसके अंग, सब असलियत में है पर ईश्वर पर निर्भर है।
तो यहाँ दुनिया सच है?
हाँ, लेकिन ईश्वर का हिस्सा है। और यहाँ मुक्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि भक्ति और ईश्वर की कृपा से मिलती है।
अच्छा, ये अलग है। और तीसरा?
तीसरा है मध्व का द्वैत वेदांत। ये तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि ईश्वर, आत्माएं और दुनिया, ये तीनों अलग अलग और हमेशा से अलग रहने वाले सत्य हैं।
द्वैत मतलब दो या यहाँ तीन?
हाँ, यहाँ द्वैत का मतलब है कि ईश्वर और बाकी सब चीजों के बीच हमेशा एक भेद बना रहता है, वो कभी एक नहीं होते। और यहाँ मुक्ति ईश्वर की सेवा और भक्ति में है।
वाह, मतलब एक ही उपनिषदों से कितनी अलग अलग व्याख्याएं।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस समय कितनी जबरदस्त बौद्धिक बहस चलती थी भारत में।
सही बात है। तो ये हुआ हिंदू दर्शन का एक खाका। अब आते हैं बौद्ध दर्शन पर, वो भी भारत में ही शुरू हुआ।
हाँ, संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, उन्होंने जीवन के दुख को देखा, महसूस किया और फिर उससे निकलने का रास्ता खोजा और बताया।
उनकी मूल शिक्षा क्या थी?
मूल शिक्षा है चार आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्ति। तीसरा, दुख खत्म हो सकता है, यानी निरोध संभव है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं।
ये तो सुना है, लेकिन बौद्ध धर्म की कुछ बातें हिंदू धर्म से बहुत अलग है ना?
हाँ बिल्कुल। तीन बुनियादी लक्षण बताए गए हैं अस्तित्व के। पहला, अनित्य, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है।
सब कुछ बदल रहा है, ठीक है।
दूसरा, दुख, यानी जीवन में एक तरह का असंतोष या पीड़ा है, क्योंकि हम उन बदलती चीजों से चिपके रहना चाहते हैं जो स्थायी है ही नहीं। और तीसरा,
हाँ, आपने कहा था वो सबसे क्रांतिकारी है।
हाँ, तीसरा है अनात्मन, मतलब कोई स्थायी आत्मा या स्व सेल्फ नहीं है।
कोई आत्मा नहीं, ये कैसे? हिंदू दर्शन तो आत्मन पर ही टिका है।
यही तो बौद्ध धर्म कहता है कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा समझते हैं, वो असल में बस पांच चीजों का एक समूह है जिन्हें स्कंध कहते हैं। रूप, शरीर, संवेदना, फीलिंग्स, संज्ञा, पहचान, संस्कार, मानसिक आदतें और विज्ञान, चेतना।
अच्छा, पांच स्कंध।
हाँ, और ये पांचों लगातार बदल रहे हैं, जैसे नदी का प्रवाह। हर पल पानी बदल रहा है, पर हम उसे एक ही नदी कहते हैं। वैसे ही ये स्कंधों का प्रवाह है जिसे हम मैं कह देते हैं। कोई ठोस स्थायी आत्मा जैसी चीज इसके पीछे नहीं है।
ये समझना तो मुश्किल है, अगर आत्मा नहीं है तो कर्म और पुनर्जन्म कैसे होता है?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत में।
प्रतीत्य समुत्पाद, ये क्या है?
इसका मतलब है आश्रित उत्पत्ति, यानी हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है और दूसरी चीजों पर निर्भर होती है। कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है, एक चेतना का क्षण अगले क्षण को। इसी प्रवाह में कर्म के संस्कार आगे बढ़ते हैं बिना किसी स्थायी आत्मा के।
ये तो बहुत ही अलग नजरिया है दुनिया को देखने का।
बिल्कुल। और बौद्ध धर्म में भी समय के साथ अलग अलग स्कूल बने।
हाँ,
जैसे थेरवाद, जो ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में है, ये पुरानी धारा मानी जाती है। इसमें खुद की मुक्ति पाना यानी अरहत बनना आदर्श है।
और दूसरा?
दूसरा है महायान, जो तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया में ज्यादा फैला। ये बाद का विकास है। इसमें आदर्श है बोधिसत्व बनना, यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद निर्वाण पा सकता है पर रुक जाता है ताकि बाकी सभी प्राणियों को मुक्ति दिला सके।
बोधिसत्व, हाँ ये भी सुना है। इसमें करुणा पर बहुत जोर है शायद।
हाँ, करुणा और प्रज्ञा पर। और महायान में ही एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणा आई, शून्यता।
शून्यता मतलब सब कुछ खाली है, शून्य।
नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं नहीं है। इसके सबसे बड़े व्याख्याकार थे नागार्जुन। शून्यता का मतलब है कि सभी चीजें अपने स्वाभाविक, स्वतंत्र, स्थायी अस्तित्व से खाली हैं। क्योंकि सब कुछ प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से बंधा है, सब कुछ दूसरों पर निर्भर है, इसलिए किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो शून्य है ऐसे अस्तित्व से।
ये तो और भी गहरा है, मतलब न तो चीजें पूरी तरह हैं, न पूरी तरह नहीं है।
हाँ, नागार्जुन इसे मध्यम मार्ग कहते हैं। ये शाश्वतवाद की चीजें हमेशा रहती हैं और शून्यवाद की कुछ भी नहीं है के बीच का रास्ता है।
ठीक है, तो ये हुआ हिंदुओं और बौद्ध दर्शन। अब किताब चीन की तरफ मुड़ती है।
हाँ, चीन की दो महान परंपराएं। पहला, कन्फ्यूशियसवाद। नाम आता है कन्फ्यूशियस से, जिन्हें चीन में कोंगजी कहते हैं।
कन्फ्यूशियस, इनका जोर किस पर था?
इनका मुख्य ध्यान समाज, नैतिकता और सही शासन व्यवस्था पर था। ये बहुत प्रैक्टिकल थे। मुख्य अवधारणाएं हैं रेन, जिसका मतलब है मानवता, करुणा, दूसरों के लिए सोचना।
रेन, ठीक है।
फिर है ली, यानी सही व्यवहार, रीति रिवाज, सामाजिक शिष्टाचार, कैसे उठना बैठना, कैसे बड़ों का आदर करना, ये सब। और जिनजी, यानी आदर्श व्यक्ति, भला मानुष, जो लगातार खुद को सुधार कर बनता है।
तो समाज और व्यक्ति का सुधार जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल, कन्फ्यूशियस मानते थे कि परिवार समाज की नींव है। अगर परिवार सही चलेगा तो समाज सही चलेगा, और अच्छा राजा वही है जो खुद नैतिक हो। व्यक्तिगत नैतिकता और राजकाज आपस में जुड़े हैं।
ये तो काफी व्यवस्थित सोच है समाज के लिए।
हाँ, और इसका दार्शनिक साथी या कहें कि विरोधी है ताओवाद।
ताओवाद, इसका मुख्य विचारक कौन है?
नाम जुड़ते हैं लाओजी और ज़्वांगज़ी से। अगर कन्फ्यूशियस समाज पर जोर देते हैं तो ताओवाद प्रकृति के साथ तालमेल पर जोर देता है।
प्रकृति के साथ तालमेल
कैसे? इनकी मुख्य अवधारणा है ताओ, जिसे मार्ग या रास्ता कह सकते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो अवर्णनीय रहस्यमयी शक्ति या सिद्धांत है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ये हर चीज के पीछे का सहज प्रवाह है।
ताओ, जिसे बयान करना मुश्किल है।
हाँ, कहते हैं जिस ताओ का वर्णन किया जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है।
अच्छा, और क्या है इसमें?
एक बहुत मशहूर विचार है वुवेई।
वुवे, इसका क्या मतलब है?
इसका शाब्दिक अर्थ है अकर्म या बिना कर्म के, लेकिन इसका मतलब आलस या कुछ ना करना नहीं है। इसका मतलब है अनायास कर्म, बिना जोर लगाए काम करना।
बिना जोर लगाए? जैसे?
जैसे पानी, वो कोई जोर नहीं लगाता पर पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना लेता है। या जैसे कोई माहिर कारीगर जो बिना ज्यादा सोचे विचारे सहजता से अपना काम करता है। ये कृत्रिम नियमों, योजनाओं, कोशिशों के बजाय प्रकृति के सहज प्रवाह के साथ बहना सिखाता है।
ये तो बहुत अलग है कन्फ्यूशियसवाद से।
हाँ, ताओवाद सामाजिक परंपराओं, दिखावे, कृत्रिम भेदों की आलोचना करता है। ये सादगी, विनम्रता और जीराने यानी स्वाभाविकता या सहजता पर जोर देता है। चीजों को वैसे ही होने देना जैसे वे स्वाभाविक रूप से होती हैं।
वाह, तो हिंदू, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, ताओ, कितना कुछ है इन पूर्वी दर्शनों में। इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं?
हाँ, कई महत्वपूर्ण थीम उभरते हैं। पहला तो यही जो हमने शुरू में कहा था, इन परंपराओं में दार्शनिक परिष्कार है। ये उतनी ही कठोर, व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक हैं जितनी पश्चिमी परंपराएं। ये सिर्फ रहस्यवाद नहीं है।
बिल्कुल, वो स्टीरियोटाइप टूटता है। दूसरा?
दूसरा, चेतना और स्व को समझने के कितने अलग अलग नजरिए हैं। हिंदू आत्मन कहता है कि एक स्थायी आत्मा है जो ब्रह्म है। बौद्ध अनात्मन कहता है कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बस प्रवाह है। कन्फ्यूशियस का स्व समाज और रिश्तों से जुड़ा है। ये हमें अपने बारे में सोचने के कई विकल्प देते हैं।
सही बात है। तीसरा?
तीसरा, सिद्धांत और व्यवहार का गहरा जुड़ाव। ये दर्शन सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, इनका लक्ष्य है जीवन को बदलना, मुक्ति पाना, मोक्ष निर्वाण या समाज और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। ज्ञान को जीना पड़ता है।
हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है।
चौथा, एक समग्र होलिस्टिक समझ। ये परंपराएं जीवन के अलग अलग पहलुओं जैसे तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, नैतिकता, मनोविज्ञान, राजनीति को अलग अलग खानों में नहीं बांटती। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
और आखिरी?
आखिरी, पार सांस्कृतिक दार्शनिक संवाद का महत्व। रामप्रसाद जोर देते हैं कि हमें इन पूर्वी विचारों को सिर्फ एक्जॉटिक समझकर किनारे नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी बौद्धिक उपलब्धियों का सम्मान करते हुए उनसे एक गंभीर, सच्ची बातचीत करनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पे याद रह जाते हैं?
हाँ, बिल्कुल है। जैसे रामप्रसाद का खुद का नजरिया कि पूर्वी दर्शन को गंभीरता से बौद्धिक जुड़ाव की आवश्यकता है, न कि केवल विदेशी आकर्षण की। ये तो जैसे पूरी किताब का सार ही है।
हाँ, ये तो है। और दर्शनों से?
वेदांत से वही तत्वम असी, तुम वही हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक पूरी दार्शनिक यात्रा का लक्ष्य है। ये सोचना कि मैं और ये ब्रह्मांडीय सत्य एक ही हैं।
बौद्ध धर्म से?
बौद्ध धर्म से वो क्रांतिकारी विचार के कोई स्थायी आत्मा नहीं है, अनात्मन, जिसे हम मैं कहते हैं, वो बस बदलती हुई घटनाओं, स्कंदों की एक धारा है, और इसे समझना ही दुख से मुक्ति की कुंजी है।
ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। कन्फ्यूशियस से?
कन्फ्यूशियस का वो विचार कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्तिगत नैतिक सुधार से शुरू होती है, मतलब अगर हमें समाज सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना होगा। व्यक्तिगत नैतिकता और समाज का भला सीधे जुड़े हैं।
कितनी सीधी और सच्ची बात है। और ताओवाद?
ताओवाद से दो बातें, एक तो जिस ताओ का वर्णन किया जा सके वो शाश्वत ताओ नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरे सत्य शायद भाषा की पकड़ से बाहर होते हैं। और दूसरा सर्वोच्च गुण है बिना प्रयास के कार्य करना, वूवे, पानी की तरह होना। ये शायद आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी सबक है, सहजता से जीना।
ये सब विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब वो सवाल जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा, इन सब पुरानी बातों का हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम, इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है?
ये सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब है बहुत काम है। ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, जैसे व्यक्तिगत विकास के लिए सोचें। बौद्ध धर्म हमें दुख के स्वभाव को समझने और उसे मैनेज करने के तरीके सिखाता है, जैसे सजगता, माइंडफुलनेस। हिंदू धर्म हमें जीवन में अपना उद्देश्य या धर्म खोजने के लिए प्रेरित कर सकता है। कन्फ्यूशियवाद हमें अच्छे रिश्ते बनाने, नैतिक बनने के लिए गाइड कर सकता है।
और ताओवाद का वूवे?
हाँ, वूवे, ये हमें चिंता कम करने में मदद कर सकता है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर चीजों को सहजता से होने देना सीखना, ऑफिस में, रिश्तों में, कहाँ नहीं काम आ सकता ये।
सही बात है। और नैतिकता और लीडरशिप के क्षेत्र में?
बिल्कुल, कन्फ्यूशियस का नैतिक चरित्र पर जोर आज भी नेताओं के लिए प्रासंगिक है। ताओवाद का वूवे लीडर्स को सिखा सकता है कि हर छोटी बात में दखल देने, माइक्रो मैनेज करने के बजाय अपनी टीम को सशक्त करें, उन्हें स्पेस दें। बौद्ध धर्म का आपसी निर्भरता का विचार हमें टीमवर्क और सहयोग का महत्व समझाता है।
पर्यावरण के बारे में भी कुछ है?
हाँ जरूर, ताओवाद का प्रकृति के साथ सद्भाव का संदेश, बौद्ध धर्म की सभी जीवों के प्रति करुणा और अंतर्निर्भरता का विचार, ये हमें पर्यावरण के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बना सकते हैं।
और रिश्तों में?
रिश्तों में कन्फ्यूशियसवाद हमें आपसी सम्मान और जिम्मेदारी सिखाता है, बौद्ध धर्म करुणा और सहानुभूति पर जोर देता है।
और मानसिक स्वास्थ्य के लिए?
योग और ध्यान तो है ही, जो हिंदू और बौद्ध परंपराओं से निकले हैं। साथ ही अनासक्ति का अभ्यास, मतलब चीजों या नतीजों से बहुत ज्यादा चिपके ना रहना, ये हमें तनाव और निराशा से निपटने में मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये दर्शन हमें अलग अलग संस्कृतियों को बेहतर समझने और उनसे संवाद करने की क्षमता देते हैं।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अकादमिक चीजें नहीं है, बल्कि जीवन जीने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं।
बिल्कुल।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि दर्शन यानी जीवन के गहरे सवालों पर सोचना, ये किसी एक जगह या एक संस्कृति की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक ग्लोबल मानवीय कोशिश है। दुनिया भर में लोगों ने अपने अपने तरीके से, लेकिन उतनी गंभीरता से इन सवालों के जवाब ढूंढे हैं। हमें सतही तारीफ से आगे बढ़कर एक असली गहरी बातचीत की जरूरत है इन विचारों के साथ।
और मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि ये प्राचीन दर्शन सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, इनमें आज भी जबरदस्त प्रासंगिकता और ताकत है। ये हमें आज की जटिल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए टाइमलेस, प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव नजरिए देते हैं। ये सिद्धांत और जीवन के अनुभव को बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं, जिसकी आज शायद हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।